ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय हमारे सामने है, रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस। और सचमुच ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी आवश्यकता, खुशी को एक नए तरीके से जीवन में आवाहन करने के लिए उसके ऊपर सोचना पड़े तो क्या कहेंगे। जो खुशी एक बच्चे को अगर देखे तो एक नेचुरल रूप में है, लेकिन आज हमारे जीवन में हमें खुशी के मौके ढूंढने पड़ते हैं, खुशी के लिए त्योहार मनाने पड़ते हैं कि थोड़ी घड़ियों के लिए हमारे जीवन में खुशी आ जाए, या खुशी की परिभाषा कुछ बदलने की जरूरत है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक स्कूल टीचर ने स्कूल के सारे माना क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कहा कि आप सभी बताइए, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बी। किसी ने कहा आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, किसी ने कहा आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, किसी ने कहा आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, किसी ने कहा आई वांट टू बी अ डॉक्टर, किसी ने कहा आई वांट टू बी एन इंजीनियर, लेकिन एक बच्चे ने खड़े होकर कहा आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी। टीचर ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहा आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। बच्चे ने कहा मैडम आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड लाइफ, आपने जीवन को ही नहीं समझा है। और सचमुच हम सभी जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं और समझते हैं कि तभी हमारे जीवन में खुशी होगी। अगर हम सक्सेसफुल होंगे तभी हम खुश रह सकेंगे, ये होगा तो हमारे जीवन में खुशी होगी, वो होगा। और इस तरह से हमने अपनी जीवन शैली को एक कंज्यूमरिज्म वाली बना दिया है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और इस चाहिए चाहिए की दौड़ में हम कहीं अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। और इसीलिए जब एक छोटा बच्चा देखते हैं आप कई बार बहुत खुश होकर के हाथ पैर हिलाते हुए मुस्कुराता है, हंसता है, बड़ा प्यारा लगता है, हर कोई उस हंसते हुए बच्चे के तरफ आकर्षित हो जाता है। एक बच्चा सदा हंसता कैसे रह सकता है, कैसे रहता है एक बच्चा सदा हंसता कैसे रहता है? बहुत कम उसको रोना आ जाता है, लेकिन अगर किसी ने उसको दो थप्पड़ भी मारी तो भी थोड़ी देर के बाद देखो वो हंस रहा है, खिलखिला करके मुस्कुराता है। एक बच्चा सदैव हंस सकता है, हम क्यों नहीं हंस सकते हैं, क्या कहेंगे आप? इसके पीछे क्या है जो उसको सदा मुस्कुराने के लिए नेचुरल रूप में रहने के लिए वो स्टेट बन जाती है और हमारे जीवन के अंदर हमें मौके ढूंढने पड़ते हैं? ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो शायद हम भी हंसते रहते थे, फिर कहां गई वो हंसी, वो खुशी, वो आनंद कहां चला गया, क्या कहेंगे आप सभी? तो बच्चा सदा हंस सकता है उसका कारण क्या है? हाँ जी, हाँ, निर्दोष स्मृति है, निर्दोष कृति है, इसलिए। अच्छा, निर्दोष बुद्धि है, तनाव मुक्त है और वो वर्तमान में जीता है, और भी बेफिक्र है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो कंडीशनल नहीं है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. और बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आपके. और मोह माया से मुक्त है. वेरी गुड, अबोध है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. ओके, हम लोग इसीलिए टेंशन में आते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, मोह माया में जकड़े. माना आंसर्स हमारे पास है कि हमारी खुशी कहाँ गायब हो गई है ना. लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो उसकी कॉन्शियसनेस, एक बच्चे की कॉन्शियसनेस एक नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस है. और हमारी कॉन्शियसनेस इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए हैं, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है. चाहिए कि चाहना उसे, या पोस्ट पोजीशन आदि उसे, या कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना इंटेंगल्ड हो जाता है और इसलिए वो अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को भूल जाता है और इसलिए वो खुशी भी साथ साथ में गायब हो जाती है. जितनी वो इनोसेंट कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जितनी हमारी कॉन्शियसनेस प्योर है उतनी हमारी खुशी अधिक है. रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस में हमको सबसे पहली बात यही है कि वी हैव टू गो बैक टू दैट प्योर कॉन्शियसनेस. उस कॉन्शियसनेस में जब हम जाएंगे, स्टेबिलाइज हो जाएंगे, तो अपने आप वो खुशी नेचुरल हमारी बनने लगेगी. जैसे परसों से आप यहां आए हैं, यहां आते ही एक पवित्र वातावरण है, अनकंडीशनल वातावरण है, कोई कंडीशंस नहीं, कुछ चीज आपसे कही नहीं जाती है, आपको हर बात के लिए एक स्वतंत्रता है, जहां जाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं. आप खुशी को महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप एक प्योर कॉन्शियसनेस में आ गए हैं. इस समय आप अपनी उस आइडेंटिटी को भी जैसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हम एक मीडिया पर्सन है, हम ये कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस से भी धीरे धीरे आप उस प्योर कॉन्शियसनेस में नेचुरल रूप से आ रहे हैं. कोई कहता नहीं आपको कि आप, मैं सोल हूं, ये आत्मा हूं, ये रटो, ये मंत्र जपो, ये नहीं कह रहे. लेकिन इस नेचुरल प्योर कॉन्शियसनेस में उस आइडेंटिटी की ओर जितना आप वापस जाते हैं उतना अंदर में मन प्रफुल्लित होने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है. तीन दिन में आपको कोई स्ट्रेस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उस प्योर कॉन्शियसनेस में आप स्टेबिलाइज्ड है, अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस में आप स्टेबिलाइज्ड है. इसीलिए तो पहली डेफिनेशन अगर मैं कहूं हैप्पीनेस के लिए कि हमें उस वास्तविक कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबिलाइज करने की आवश्यकता है. आज देखते हैं कि दुनिया भाग रही है. कहां भाग रही है? दौड़ रहे हैं सब कुछ. कई बार हम लोग देखते हैं कि कई लोग दौड़ रहे हैं, और जब लोग दौड़ते हैं ना तो तीन चीजें साथ में उठाना जरूर याद रखते हैं, भूलते नहीं है. कौन सी तीन चीज उठाने की स्मृति रखते हैं? पहला, मैंने वॉलेट लिया कि नहीं लिया. आपको भी काम पर भागना होता है, सुबह थोड़ी भी देरी हो जाती है तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? वॉलेट लिया कि नहीं लिया. दूसरा चेक करते, चाबी लिया कि नहीं लिया. और तीसरा चेक करते, मोबाइल लिया. ये तीन चीज जरूर चेक करते हैं. और ये तीन चीज, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल है पीछे के पॉकेट में और मोबाइल कहाँ गया, हाथ में नहीं, ढूंढते रहो, भागते रहो, सारा घर ढूंढना, और फिर याद आता, अरे पीछे के जेब में रखा है. कई हमारे जीवन में भी ऐसा ही तो कुछ नहीं हो रहा है? खुशी को हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इतना बाहर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब पता चलता है वो तो हमारे भीतर है, बाहर है ही नहीं. और भीतर है, भीतर कहां है? हमारे स्टेट ऑफ माइंड में है, हमारे विचारों में है. तो हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज इनसाइड। लेकिन इनसाइड भी कहां, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की एक स्थिति है, एक फीलिंग है। इसीलिए कहा इट्स हाउ आई थिंक हाउ आई फील। किसी ने बहुत सुंदर कहीं पर मैंने डेफिनेशन पढ़ी हैप्पीनेस की, और हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफ पीसफुल कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। ये किसी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ था कि हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफ पीसफुल कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि एंड फुलफिलमेंट, जहां जैसे सब कुछ मेरे पास है। इस फीलिंग के साथ जब व्यक्ति जीवन में बढ़ता है, आगे जीने लगता है, तब उसको सच्ची भीतर से खुशी प्राप्त होने लगती है। लेकिन ये स्टेट ऑफ माइंड हमारी तब बनती है जब कुछ फंडामेंटल लॉज हम समझ लेंगे। और वो फंडामेंटल लॉज कौन से हैं जिसको समझने की जरूरत है? पहला लॉ है द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, कि सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए कई बार हम अपने मन के अंदर, अपने विचारों में, अपने भावनाओं में बहुत कुछ पकड़े हुए हैं जिसको छोड़ नहीं पाते हैं। हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जब क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं और वो ग्रजिस के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? जिसके प्रति मैंने वो ग्रजिस पकड़ के रखी है उसको तकलीफ हो रही है या मुझे तकलीफ हो रही है? खुद को तकलीफ हो रही है कि मैं अगर जब भी उस व्यक्ति का चेहरा देख लूं मेरी खुशी गायब हो जाती है, स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। इसीलिए महान आत्माओं ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर आपके पास ये पावर है, ये लॉ को आपने समझा है कि ये लॉ मुझे दिक्कत कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं उसको क्षमा कर दूं, क्षमा करके देख लो, छोड़ दो उसको, है ना? जो उसने किया उसी के साथ है, उसकी बात को लेकर के मैं क्यों तकलीफ अनुभव करूं? जितना उसको क्षमा करते जाएंगे बच्चे खुश रहते, इसीलिए क्योंकि झगड़ा हुआ जिसके साथ हुआ, दूसरी पल में उसको भूल करके माफ करते हुए उसी के साथ खेलना है उसको, इसलिए वो खुश रहते हैं। जिस दिन हम भी ये बात सीख लेंगे अपने जीवन के अंदर, द पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, जिस तरह बच्चा भूल जाता है सब कुछ, इसी तरह से मैं भी जिस दिन क्षमा कर दूं और भूल जाऊं, छोड़ दो, पकड़ के नहीं रखो। जितनी बातों को हम पकड़ के रखेंगे कहीं न कहीं हमें खुद में ही वो तकलीफ ज्यादा होंगी, हमारी खुशी गायब ज्यादा होंगी, उसकी नहीं वो तो, और उसको खुश देखते हुए और ज्यादा तकलीफ होगी। ये तो खुश है, देखो इतना उल्टा सीधा बोला भी, मुझे तकलीफ भी दिया, और फिर भी ये तो खुश है, तो उसको खुश देख करके और ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर उसने बोला, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी जबान ऐसी है, उसको मुबारक हो। मैं क्यों उसकी बात के कारण खुद दुखी हो जाऊं? नेचर उसका, प्रॉब्लम उसका, और तकलीफ मैं अनुभव करूं, ये कहां की समझदारी है? तो इसीलिए छोड़ दो, पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ दो आप। दूसरा पावर, पावर टू लव। तीनों पावर्स जो है, तीनों लॉज को अच्छी तरह से एक साथ यूज करना होगा। पहला पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, दूसरा पावर टू लव, टू गिव, उसको दियो आप। शायद वो इस तरह से बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जीवन के अंदर कुछ अप्राप्ति है, कुछ कमी है, या वो कुछ दे नहीं पा रहा है इसीलिए किसी को, इसलिए उसको तकलीफ है। एक बार एक बहन से मिली मैं, यंग लड़की थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। उससे बात करते करते मैंने उसको पूछा, उसके जीवन का बैकग्राउंड आदि पूछा, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं रहे, बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैं अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ रहने लगी, लेकिन मैं हरेक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, सबको मदद करती थी सबके लिए, लेकिन मैंने देखा कि मैं जितना मदद करती थी, जितना अच्छे से बिहेव करती थी, वो लोग मुझे उतना ही डांटते थे, तुम ऐसी है, कैसे भी उल्टे सीधे बातें बोलते थे मेरे को, तो मुझे इतना चोट पहुंचाते थे, इतना चोट पहुंचाया दुनिया ने कि एक दिन मैं सोचने लगी कि टिट फॉर टैट, अब ये लोग जो मुझे दे रहे हैं ना, मुझे वही देना है उनको, और वही देना शुरू कर दिया मैंने कि वो अगर बुरा तो। मैं हर बात में इतना गुस्से में आ जाती थी, किसी को मार देती थी, किसी को कुछ तोड़ देती थी, कोई सामान तोड़ देती थी, माना मैं इतना लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया, और दूसरों को तकलीफ देने में मैं खुश नहीं रही। मैं शायद अपनी आइडेंटिटी भूल गई, मैं खुद से भी अलग हो गई, और एक दिन जब मुझे बहुत तकलीफ हुई, दूसरों से बुरा व्यवहार करने पर हर कोई मुझसे नफरत करने लगा, हर कोई मुझे नफरत से देखने लगा, ऐसा हुआ कि मैं आईने के सामने खड़ी हुई, और उस समय ऐसा लगा मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मैं बार बार अपने ही उस चेहरे को कह रही थी, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और इतना मैं डिप्रेस्ड होने लगी। तब मैंने सोचा मैं कहां पहुंच गई, और ही मैं जब सबको मदद करती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार, तब मैं ज्यादा खुश रहती थी, भले लोग कुछ भी बोलते थे। तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे वापस उस आइडेंटिटी की तरफ मुझे जाना है, और इसलिए धीरे धीरे मैंने अपनी वापसी, रिटर्न यात्रा शुरू किया कि जो थी मैं वो शायद पहले बहुत अच्छी थी। मैंने पुनः अपने आप की उस आइडेंटिटी में, जहां जिस आइडेंटिटी को मैंने खो दिया था, उस आइडेंटिटी में वापस मैं स्टेबलाइज हो गई, और मैंने वापस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, देना शुरू किया, और आज वो समय आ गया कि जितना मैं देती गई उतना मुझे डबल ट्रिपल होकर के मिलने लगा। आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। कहने का भावार्थ यही है कि देना शुरू करो। संसार का ये नियम है, जितना आप देंगे उतना डबल ट्रिपल होकर के आपके पास वापस आएगा। देखो, इस संसार में हर चीज दे रही है, लाइट दे रही है, प्रकाश दे रही है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं कुर्सी आपको आराम दे रही है, पंखा दे रहा है, बाहर नेचर में देखो हर चीज दे रही है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ले रही है। ये छत आपको दे रही है, इस घर में आप रहते हो वो छत भी आपको कुछ दे रही है, कपड़े भी आपको कुछ दे रहे हैं, हर चीज आपको दे रही है, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, हर चीज दे रही है, हर चीज को इसीलिए देवता कह दिया, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, नदी को भी देवता कहा, वृक्षों को भी देवता, हर चीज दे रही है सिवाय मनुष्य के, जो ले रहा है। इसलिए हम कहते हैं ये सब देवता बन गए और हम लेवता हो गए हैं, और जब से लेवता बने ना तब से दुखी हो गए। वो कहानी एक बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को कहा कि मैं जरा जा रहा हूं, तुम एक काम करना, ये आश्रम पीछे से संभालना। उसने कहा ठीक है। वो शिष्य रोज जो है नदी पर जाता था स्नान करने के लिए, और अपना जो धोती था उसको धो करके वहीं सुखा देता था, एक झाड़ के डाली के ऊपर सुखा देता था। अब एक बार ऐसा हुआ कि उस डाली के ऊपर एक चूहा आ गया और उसने कपड़ा कुतरना चालू कर दिया। जब वो शिष्य आया, देखा, अरे उसका कपड़ा तो पूरा कुतर गया है, तो उसने सोचा भाई एक नई धोती लाऊंगा फिर ये कुतर देगा, तो एक बिल्ली जरूर रखनी पड़ेगी। तो बिल्ली लेके आया ताकि वो चूहा वहां आए नहीं। लेकिन बिल्ली थोड़ी देर में म्याऊं म्याऊं करने लगी, भाई दूध चाहिए उसको, पोषण चाहिए। तो कहा भी दूध कहां से लाऊं, तो कहा उसके लिए तो गाय लेनी पड़ेगी। तो उसने गाय खरीदी। अब गाय खरीदने के बाद अब गाय तो इतना गंद कर रही है, दूध भी दे रही लेकिन गंद भी तो कर रही है, वहां उसका कचरा कौन उठाएगा, क्या करेंगे। तो फिर कहा भी ये कौन करेगा, तो किसी ने उसको सलाह दिया तुम एक काम करो, ये सारा काम संभालने के लिए तुम शादी कर लो, शादी कर लेगा एक घरवाली आ जाएंगी ये सब संभाल लेंगे। उसने कहा ये बात तो ठीक है। उसने शादी कर ली, शादी करके घरवाली ले आया, लेकिन घरवाली इतनी डिमांडिंग थी, आए दिन उसको नई चीज चाहिए, कोई ना कोई गहना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा परेशान हो गया। तब तक गुरुजी जब वापस आए तो देखा क्या हाल बना दिया ये तो तुमने, कहीं हमने भी यही काम तो नहीं किया, हमने भी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और इसीलिए लेवता ऐसा बन गए, हर चीज मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेवता बन गए, लेवता बन गए, इसलिए दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो वो परमात्मा भी आकर कहते मैंने कहा तुम्हें देवता बना करके भेजा था और तुम लेवता बन गया, आज से तुम एक काम करो फिर से देवता बनो। आज हम भी आपको यही कहते हैं, ये एक चीज यहां से जरूर सीख के जाना कि रोज मुझे कोई ना कोई एक चीज देना जरूर है। मैं चीज वस्तु या पैसे देने की बात नहीं कर रही हूं, आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, किसी को मोटिवेशन के दो शब्द कह सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और जिस दिन आपने एक चीज भी देना शुरू किया, देने के बाद आप महसूस करना आपको खुशी हुई या उदासी हुई, क्या हुआ, क्या फीलिंग आई आपको, क्या महसूसता आई, आप देखेंगे खुद महसूस करेंगे। जिस दिन आप देवता बनेंगे ना, देवता बनेंगे, आप तीन दिन तो बन ही सकते हैं, तीन दिन तो बन सकते हैं ना, देवता बन सकते हैं। कोई ना कोई सहयोग देना है, कोई ना कोई सम्मान के दो शब्द कहने हैं, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को शुभ भावना देनी है, शुभकामना देनी, ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये करके देखना। अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगे तो देवता नहीं बनना, लेवता बनने में ही आपको अगर ज्यादा खुशी मिल रही है तो वही रखना। कहने का भावार्थ मेरा ये है, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य को देवता बनाना। कैसे देवता बनाते हम, बस देना शुरू करो, कुछ न कुछ देना है। बहुत कुछ लिया आज तक, बहुत कुछ लेकर के इकट्ठा किया, आज के बाद मुझे कुछ न कुछ देना है। आप खुद महसूस करेंगे, किसी को अगर बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार करा दे करके देखो कितनी दुआएं आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके अंतर से कुछ न कुछ आपको ऐसी आशीर्वाद मिल जाएंगी जो आशीर्वाद आपका कहीं बिगड़ा हुआ काम बनाना शुरू कर देगा, ये महसूस करेंगे। देवता बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, यहां से एक चीज ले जा सकेंगे ले जा सकेंगे, लेकर के देखो, ले जा करके देखो कितना अच्छा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करना आगे के लिए भी। नहीं अच्छा लगे छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि आपको सचमुच अच्छा लगेगा। पावर टू गिव है ना, एक तो पावर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, दूसरा पावर टू गिव, गिव व्हाट, लव। क्योंकि देना कब होता है, जब अंदर से प्यार जागृत होता है तब आप कुछ न कुछ दे सकेंगे, नहीं तो नहीं दे सकेंगे। इसीलिए देना आरंभ करो, किसी को प्यार दो, सम्मान दो, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, देना शुरू करो, बड़ा अच्छा फीलिंग आएगी। ये सेकंड लॉ है, कहीं बहुत सुंदर पढ़ा मैंने, दुनिया में उसी व्यक्ति को ऑनर किया गया, संसार में उसी व्यक्ति को ऑनर किया गया जिसने संसार को कुछ दिया है। जिसने संसार से कुछ लिया है उसको कभी ऑनर नहीं किया गया, अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड उसी को मिला जिसने कुछ दिया है समाज को, जिसने समाज से लिया उसको कभी अवार्ड नहीं दिया गया। तो हमेशा देने वाले को अवार्ड करती ही है कुदरत भी, ऊपर वाला भी और लोग भी, समाज भी उसको अवार्ड देती है। तो पावर टू गिव लव, ये सेकंड फंडामेंटल लॉ है। और तीसरा फंडामेंटल लॉ है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पावर टू गिव लव भी तभी हो सकता है कि जब एक्सेप्टिंग। इसलिए किसी ने बहुत कहा कि आज दुनिया में हमारी खुशी गायब क्यों हुई, एक्सपेक्टेशंस के कारण। जितना एक्सपेक्ट करने गए हम, ये मुझे देवे तो ठीक है, ये मुझे देवे तो ठीक है, ये मुझे ऐसा देवे तो ठीक, एक्सपेक्टेशंस ने हमेशा हमें नीचे ही कर दिया। देने वाले का हाथ ऊपर रहा, हमारा हाथ नीचे, तो एक्सपेक्टेशंस ने हमें हमेशा छोटा कर दिया। लेकिन एक्सेप्टेंस, जितना हमने रखा अनेक लोगों के प्रति, एक्सेप्ट किया उसको, और एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए उसको देना आरंभ किया, तो हम ऊंचा उठ गए, हमारा अस्तित्व बड़ा हो गया, हम छोटे नहीं रहे। इसलिए पावर टू लव ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है द पावर ऑफ विजडम। देना कब, कैसे, कितना, ये भी समझ की आवश्यकता है कि कैसे देना है, किस तरह से देना है। इसीलिए कहा कि रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस में एक तो कॉन्शियसनेस और दूसरा बीइंग है ना। रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस के लिए टू चेंज द वे वी बी, जीवन के अंदर कैसे बनना चाहिए, बीइंग कॉन्शियसनेस रादर देन डूइंग कॉन्शियसनेस। आज व्यक्ति मैं ये करता हूं, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ही ऐसा करना पड़ता है, ये करना पड़ता, ये कॉन्शियसनेस, डूइंग कॉन्शियसनेस के बजाय बीइंग कॉन्शियसनेस। विजडम हमें सिखाती है, ज्ञान हमें यही सिखाता है कि कैसे हमें संसार में रहना है, कैसे हमारा अस्तित्व अपना बनाना है, किस तरह का होना चाहिए, ये हमें विजडम बताती है। और हम अपने अस्तित्व को धीरे 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 वापस इतना ऊंचा उठा सकते हैं। बूस्टर का काम अगर करता है तो ये विजडम बूस्टर का काम करती है जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। आज व्यक्ति इसीलिए एक्सपेक्टेशंस के सराउंडेड, डिजायर्स के सराउंडेड हो गया है, क्योंकि वो विजडम नहीं है, पावर विजडम का पावर नहीं है उसके पास। एंड पावर ऑफ विजडम जिस दिन अपने जीवन के अंदर आ जाए तो छोटी छोटी बातें हमें अपसेट नहीं कर सकती है, छोटी छोटी बातें हमें गुस्सा नहीं दिला सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के आधार पर ही हम उस विजडम को यूज करते हुए हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी चिंतक हो गए, महान व्यक्तित्व हो गए, उन्होंने उस पावर ऑफ विजडम को अप्लाई करना सीखा। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। एक है ज्ञान यहां तक, बुद्धि तक, लेकिन एक है ज्ञान को ट्रांसेंड करना जीवन के अंदर। और जब जीवन के अंदर वो ट्रांसेंड होने लगता है तब वो अपना व्यक्तित्व उस आधार पर बनाने लगते हैं, और वही संसार में अनेकों के लिए आदर्श बन जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि ये विजडम को अप्लाई करना सीखे। स्वामी विवेकानंद एक साधारण नरेंद्र था, लेकिन साधारण नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बन गए? पावर ऑफ विजडम। जब उस विजडम को उसने अप्लाई करना शुरू किया, अपने व्यवहार में अप्लाई किया, अपने व्यक्तित्व में उसको अप्लाई किया, अपने इंटरैक्शंस में उसको अप्लाई किया, जब उसको अप्लाई करना सीख लिया तब महानता के शिखर पर पहुंच गया। ज्ञान वो चीज है जो हमारे भीतर से एक ऐसा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से व्यक्ति महान बनता है। इसीलिए आज सवेरे भी हमने कहा, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आज दुनिया इन्फॉर्मेशन पर जी रही है, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आता है ये विजडम से. द पावर ऑफ विजडम ओनली हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म. और इसीलिए जब ये विजडम को अप्लाई करना शुरू करो, देखो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन के अंदर आता है, परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आना लगता है. और उस परिवर्तन के माध्यम से जीवन को धीरे 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 ऐसा ऊपर उठाने लगते हैं, अपलिफ्ट करने लगते हैं, ये व्यक्ति महानता के शिखर पर पहुंच जाता है. जितनी भी महान हस्तियां हो गई संसार के अंदर, चाहे जिस भी क्षेत्र के अंदर हो, वो तभी अपलिफ्ट कर पाए जब उन्होंने अपने आप को उस विजडम से एनलाइट किया. और एनलाइटनमेंट के साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन जो आया वो उनको उस महानता के शिखर पर ले जाती है. तो इसीलिए अगर आप यहां आए हो, 3 दिन आपको बहुत अच्छी बातें आपको मिली है, लेकिन ये बातें यहां तक न रहे. इस बात को ट्रांसेंड होने दो, अपनी लाइफ में, अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, अपने इंटरैक्शंस में. और फिर देखो कि किस तरह की प्राप्ति आपको अनुभव कराती है जीवन के अंदर. तो सचमुच आज हर कोई इंसान खुश रहना चाहता है, खुशी चाहता है, लेकिन वो खुशी कब आएगी जीवन के अंदर, जब उस पावर ऑफ विजडम को अप्लाई करना सीखे. इसीलिए ये 3 दिन में आपको बहुत सारी विजडम की बातें मिली है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने नोट भी किया होगा, लेकिन उन बातों को सिर्फ उस डायरी तक या दिमाग तक न रखें. बहुत सुंदर इसीलिए कहा कि खुशी की फीलिंग जो है दिमागी फीलिंग नहीं है, ये दिल की फीलिंग है. खुशी का सचमुच अनुभव करना है तो दिल से जीना आरंभ करो. दिमाग के आधार पर खाली जीते रहेंगे तो आप क्वेश्चंस जरूर पूछ सकेंगे, इन्फॉर्मेशन जरूर हासिल कर सकेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ करके वो इन्फॉर्मेशन तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद कभी कभी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि वो चीजें पता चल जाती है जो नहीं पता होती थी तो ज्यादा अच्छा होता था. और जब वो चीजें पता चल जाती है, न उसको लिख पाते हैं, न उसको किसी को बता सकते हैं, न उसको हजम कर सकते हैं, तो क्या हालत होती है. मीडिया वालों के पास कई बार ऐसी बातें आ जाती है जो लगता है इससे तो पता नहीं चलता था ना, तो ज्यादा अच्छा होता था. होता है कि नहीं होता है? पता भी चल गई लेकिन प्रकट नहीं कर पाते हैं, हाँ, चाह के भी नहीं कर सकते, तो कैसी हालत होती है. आपकी खुशी गायब हो जाती है वो चीज पता होने के बाद. कहीं ना कहीं आपका मन अंदर में आपको कछोटता है, पता होते हुए भी मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता हूं, कुछ लिख नहीं सकता हूं, सच्चाई दुनिया के सामने ला नहीं सकता हूं, उसे अच्छा होता था कि ये पता ही नहीं चलता था. है, होती है ना ऐसी स्थिति कभी कभी आपकी. तो इसीलिए कहा कि दिमाग से आप इंफॉर्मेशन को तो गैदर कर सकते थे, लेकिन दिल से, तो खुशी का अनुभव करने के लिए दिल से जीना आरंभ करो, क्योंकि ये फीलिंग है. और ये फीलिंग दिमागी फीलिंग नहीं है, ये दिल की फीलिंग है. दैट इज व्हाई आई सेड व्हेन आई लर्न हाउ टू बी कॉन्शियसनेस के साथ साथ पावर ऑफ बीइंग, जीवन के अंदर वो चीज मैं प्रैक्टिकल बन करके चलूं, जीऊं और दुनिया के सामने उस चीज को रख सकूं, ऐसी चीजें हो मेरे पास, तो वो शायद बहुत अच्छी बातें हम दुनिया को भी दे सकेंगे. क्योंकि आपके पास वो पावर है. कौन सा? कलम की शक्ति. कलम का पावर है और इसलिए कलम की शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हैं. वैसे दुनिया में कहा जाता है, मीडिया में, गुड न्यूज इज नो न्यूज, है ना? लेकिन शायद यहां आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक अलग दृष्टिकोण मिलेगा कि आज दुनिया भी अच्छी बातों के लिए तरस रही है, अच्छी बातों के लिए तरस रही है. और अगर वो चीजें आपके द्वारा उनको मिल जाएंगी, देखो उसके बाद लोगों का रिस्पांस कैसा है, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति कैसी होगी. वो हमेशा आपके तरफ से ये अपेक्षा रखना शुरू कर कि यही एक व्यक्ति है जो कुछ अच्छी चीजें देगा, अच्छी चीजें देगा. अब लोग इतना ऊब गए हैं किससे, बैड न्यूज पढ़ पढ़ करके, नेगेटिव न्यूज पढ़ पढ़ करके इतना उब गए हैं कि अब कुछ चेंज चाहते हैं. सो लेट मी बी दैट चेंज एजेंट. और पॉजिटिव बातों को जब ले आएंगे हम और पॉजिटिव बातें शेयर करना शुरू करेंगे तो शायद लोगों को वो बहुत अच्छी फीलिंग देंगी. हमारे पास भी यहां से कई मैगजीन्स निकलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और हम देखते हैं कि लोग इतना उसको पढ़ करके लाइक करते हैं और कहते हैं नहीं और ऐसी कोई चीजें हो हमें दो, आप दो दो. तो अब पता चलता है कि जो आज दिन तक एक कॉन्सेप्ट था कि गुड न्यूज इज नो न्यूज, ये कॉन्सेप्ट अभी बदल गया है. गुड न्यूज इज द ओनली न्यूज, पॉजिटिव न्यूज इज द ओनली न्यूज. लोग अब नेगेटिव पढ़ पढ़ करके थक गए हैं, उदास हो गए हैं, नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए अब मुझे अच्छी. उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जीवन की शुरुआत बी लेटर से होती है, बी लेटर से. जन्म, बर्थ, बर्थ जब हुआ तो बी लेटर से शुरू हुआ. जीवन की पूर्णावती एंड डी लेटर से होता है. ये बी और डी के बीच में जीवन है हमारा, और उस बी और डी के बीच में एक ही शब्द है सी. और सी माना कि हमारे जीवन चॉइसेस का है, हर समय हमें अच्छाई या बुराई, सही गलत, उसका चॉइस करना ही पड़ता है. तो लाइफ इज ऑल ऑफ चॉइसेस. बी शुरुआत है, डी एंड है, और बीच में लाइफ है, और वो लाइफ सी से ही भरी हुई है. हर कदम आपको चॉइस करना पड़ता है, ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, ये कहना चाहिए वो कहना, तो चॉइस. और अब आपके सामने भी मैं दो चॉइस रखना चाहती हूं. कौन से दो चॉइस? पहला चॉइस है, इफ देर आर नो सिचुएशंस, नो प्रॉब्लम्स, आई विल बी वेरी हैप्पी. ये पहला चॉइस है. और दूसरा चॉइस है, इफ आई एम हैप्पी आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स एंड ऑल सिचुएशंस. कौन सा आप पसंद करेंगे, पहला या दूसरा? सेकंड, है ना, राइट चॉइस. आप सभी इंटेलेक्चुअल्स तो हो ही राइट चॉइस करने में. अगर राइट चॉइस किया है तो आज के बाद ये बदल दो कि गुड न्यूज इज नो न्यूज नहीं, गुड न्यूज इज द ओनली न्यूज. इफ आई एम हैप्पी आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स इन एन एक्यूरेट मैनर. ये चॉइस मेरे जीवन का चॉइस रहे. और अगर मेरे जीवन का ये चॉइस है तो सबका जीवन का भी यही चॉइस है. तो मुझे उसको हैप्पीनेस देने के लिए, खुशी देने के लिए जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे देना चाहिए, वो मैं देना शुरू करूं. अगर वो भी खुश हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. आज जीवन में उदासी ही शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के निमित्त बनती है. इसीलिए जितना व्यक्ति उदास रहता है, जितना व्यक्ति स्ट्रेस रहता है, उतना ही उसके प्रॉब्लम्स का बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है. लेकिन जितना व्यक्ति खुश रहता है, जितना व्यक्ति आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, उतना बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी क्या हो जाते हैं, छोटे नजर आते हैं. तो प्रॉब्लम्स को छोटा करना, बड़ा करना, अगर मैंने रीडिफाइन किया हैप्पीनेस को, सेकंड चॉइस अगर मैं लेती हूं कि इफ आई एम हैप्पी आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस इन एन एक्यूरेट मैनर, ये मेरा चॉइस है. तो जब मेरा चॉइस ये है तो दूसरों का चॉइस भी तो यही है. इफ आई एम सक्सेसफुल आई एम हैप्पी, पहला चॉइस. इफ आई एम हैप्पी आई विल बी सक्सेसफुल. कौन सा चॉइस चाहिए? शायद दूसरा चॉइस. इसीलिए आज डॉक्टर्स भी जब देखते हैं कि बच्चे जितना नर्वस हो जाते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, जितना बच्चे खुश रहते हैं उतना परफॉर्मेंस उसका स्कूल में भी बहुत अच्छा होने लगता है. और डिप्रेशन में क्यों गए? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग. इसीलिए कहा हैप्पीनेस को रीडिफाइन करने के लिए आई नीड टू रीडिफाइन माई स्टेट ऑफ माइंड, अपने मन की स्थिति को मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है. जब उसको परिवर्तन कर देंगे तब आप देखो किस तरह से बहुत कुछ बदलता है जीवन के अंदर. जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगता है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। और जब दृष्टिकोण ही बदल जाता है, परसेप्शंस बदलने लगते हैं हमारे, तो एक्सपेक्टेशंस क्षीण हो जाते हैं। दूसरी बाह्य जो चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने कंडीशन किया हुआ है अपने मन की स्थिति की खुशी के लिए, वो सारी वैनिश हो जाती है और दृष्टिकोण मेरा बदल जाए। तो परसेप्शन बदलना है, आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू रीडिफाइन हैप्पीनेस आई नीड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ माई लाइफ। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलो, जीवन के प्रति नजरिया बदलो, हर एक व्यक्ति के प्रति भी नजरिया बदलना शुरू करो, तो देखो कैसे खुशी मिलती है। बहुत सुंदर समापन के पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूं कि एक बार एक व्यक्ति ने खूब भक्ति किया, खूब भक्ति करके भगवान से कहा। जब भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए उनके सामने, तो भगवान ने कहा मांगो, जो मांगेंगे मिल जाएगा। व्यक्ति ने कहा सचमुच मुझे मिल जाएगा? भगवान ने कहा तुमने इतनी भक्ति किया, मुझे प्रसन्न किया, मैं तुझे वरदान देने आया हूं, तुम जो चाहे ले सकता है। तो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं सदा खुश रहना चाहता हूं, सदा सुखी रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑलवेज, मैं कभी दुखी होना नहीं चाहता, ऐसा कोई वरदान दे दो, ऐसा कुछ जादू कर दो जो मैं सदा खुश रहूं अपने जीवन के अंदर। शायद हम सबकी भी यही चाहना है ना? प्रभु ने कहा तथास्तु, लेकिन उसके लिए भगवान ने उसको एक कावड़ दिया। कावड़ मालूम है ना, वो जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के गए थे, तो भगवान ने ये दिया उसको कि ये लेकर चलना, सदा सुखी हो जाएगा। और एक बात याद रखना, क्योंकि वो कावड़ को एक तरफ काला कपड़ा था, एक तरफ सफेद कपड़ा था, तो कहा काला कपड़ा पीछे रहे, सफेद कपड़ा आगे रहे, इतना याद रखना और जीवन में चलते जाना, सदा सुखी रहेगा। मनुष्य ने कहा इसका सुखी के साथ या खुशी के साथ क्या कनेक्शन है? कम से कम भगवान मुझे बताओ तो सही कि इसका क्या कनेक्शन है मेरी खुशी के साथ। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो, जीवन की यात्रा में तुम बहुत लोगों से मिलोगे, और हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, यह तो स्वाभाविक है, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। तो जब हर इंसान के अंदर अच्छाई है बुराई भी है, दोनों है, जब तुम्हें किसी की बुराई दिखाई दे तो ये काले कपड़े में पीछे डाल देना, और जब तुम्हें किसी की अच्छाई दिखाई दे तो सामने रख देना सफेद कपड़े के अंदर। और जब भी तुम किसी से व्यवहार करो, इंटरेक्शन में आओ, तो जो उसकी अच्छाई है जिसको तुमने सामने रखा है उसी के आधार पर उसके साथ व्यवहार करना, और उसकी बुराई को पीछे डाल दिया, उसके तरफ अपना अटेंशन नहीं ले जाना, उसके तरफ ध्यान नहीं देना। का बस इतनी सी बात? बोले हाँ। और मैं सदा सुखी रहूंगा? बोले हाँ, सदा सुखी रहोगे। इंसान चलने लगा उस कावड़ को लेकर के, और सचमुच जब भी उसको किसी की बुराई दिखाई देती थी पीछे डाल देता था, जब भी किसी की अच्छाई दिखाई दे सामने रख देता था, और जब किसी के साथ व्यवहार करे उसी अच्छाई के आधार पर व्यवहार कर, बड़ा खुश रहने लगा। अच्छाई के साथ व्यवहार करेगा तो खुशी मिलेगी, है ना? लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सोया हुआ था और आधी रात में अचानक इतना जोर का भूकंप आया, हड़बड़ाहट में उठा, अपना कावड़ लिए भागने लगा, भागने लगा तो उसको याद नहीं रहा, वो काला कपड़ा आगे हो गया, सफेद कपड़ा पीछे हो गया। अब जब भी किसी की बुराई दे दिखाई दे सामने रखता, जब भी किसी की अच्छाई दिखाई दे पीछे डाल देता, और उस बुराई के आधार पर ही व्यवहार शुरू कर दिया उसने। तब से लेकर के इंसान दुखी हो गया। आज हम आपको एक बात पूछते हैं, इन ऑर्डर टू रीडिफाइन योर हैप्पीनेस, कावड़ बदली करने के लिए तैयार हो? सफेद कपड़ा आगे, काला कपड़ा पीछे, ये करने के लिए तैयार हो? यस। हाउ मैनी? हाथ तो खड़ा करें। वाह, अगर इतने लोग खुश हो गए, सुखी हो गए, फिर तो संसार में परिवर्तन निश्चित है। और सचमुच ये परिवर्तन जिसने कर लिया कि हर एक की अच्छाई को देखो, अच्छाई को सामने रखो और उसी के आधार पर व्यवहार करो, आपका जीवन बदल जाएगा, दूसरों का जीवन बदल जाएगा, और आप देखेंगे कितना खुश रहने लगेंगे। यही है खुश रहने का महामंत्र, रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस, बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज विथ एवरीवन। और मैं समझती हूं जो आपका मेन थीम है मीडिया का, एन एजेंडा फॉर अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, अगर हम ऐसा करने लगेंगे कि हर एक की अच्छाई को देखते हुए ये एजेंडा को खाली अपना लें, तो एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को क्रिएट करने में मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाएगी, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और बहुत सुंदर एक समाज क्रिएट करने में आपका योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।